25 मार्च दिन रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को पड़ी भारी, स्टीव स्मिथ को छोड़नी पड़ी कप्तानी, दुनिया भर में बदनामी।
अफसोसजनक बात ये लगती है कि प्लान बनाया कैप्टन, वाइस कैप्टन और जो उन्होंने कहा लीडरशिप ग्रुप ने, और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने चुना 25 वर्षीय बैनक्रॉफ्ट को, जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है उस टीम के, फायदा उठाया है यंग प्लेयर का।
खास मुलाकात समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ।
कमाल के लोग हैं ये तो, इनका नवरात तो लड्डू खाने के बाद भी नवरात बने रहता है। लड्डू भी खा लिया और व्रत नहीं टूटा, ये तो नया व्रत है कोई, लड्डू खा के व्रत रह सकते हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ करने की बात को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है। स्टीव स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के बाकी दिनों में कप्तानी नहीं करेंगे। आईसीसी ने भी इस मामले में स्टीव स्मिथ पर एक टेस्ट मैच के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गेंद से छेड़छाड़ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने भी निराशा जाहिर की थी। कैटेलोनिया के पूर्व नेता कार्लस पुजिमुंड को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया है। कार्लस पुजिमुंड के वकील का कहना है कि वो फिनलैंड से वापस लौटने के क्रम में डेनमार्क की सीमा पार कर रहे थे, तभी जर्मन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्पेन के एक जज ने पुजिमुंड के खिलाफ यूरोपियन अरेस्ट वारंट जारी किया था। पिछले साल अक्टूबर में कैटलोनिया को स्पेन से अलग स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद से पुजिमुंड बेल्जियम में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अफगानिस्तान में नेटो देशों के शीर्ष कमांडर ने रूस पर तालिबान को मदद करने और हथियारों की आपूर्ति का आरोप लगाया था। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। काबुल स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि जॉन निकोलसन का बयान बेबुनियाद है। रूसी दूतावास ने अपने अधिकारियों से अपील की है कि यह बकवास आरोप है और इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले रूसी अधिकारियों का कहना था कि शांति वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए तालिबान से उनके सीमित संपर्क हैं। पिछले हफ्ते बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जनरल निकोलसन ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमरीकी कोशिश को रूस नाकाम करने में लगा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि पश्चिमी शहर हेरात में एक शिया मस्जिद के पास दो आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। इसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और 7 लोग जख्मी हुए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हमलावर मस्जिद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका तो खुद को उड़ा लिया। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसने यह हमला किया है। इस हमले के बारे में शहर के पुलिस उप प्रमुख अमीनुल्लाह आमीन ने कहा, हमारे शिया भाई मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तभी दो आत्मघाती हमलावर मस्जिद के परिसर में घुस गए। सौभाग्य से हमलावरों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहचान लिया। इसी दौरान एक हमलावर सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया तो दूसरे ने खुद को उड़ा लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि धमाके में एक की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हुए हैं। ये थे हेरात के पुलिस उपप्रमुख अमीनुल्लाह आमीन के शब्द। हथौड़े से अपनी पत्नी की हत्या में अंग्रेजी भाषा के अखबार गल्फ न्यूज के पूर्व संपादक को दुबई में 10 साल की कैद की सजा मिली है। अभियोक्ता ने कहा कि पिछले साल फ्रांसिस मैथ्यू ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी जेन के सिर पर हथौड़ा मार जान ले ली थी। शुरू में मैथ्यू ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर में मरा हुआ पाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे देश के शांतिवादी संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जापानी सेना बनाने का प्रावधान संविधान में शामिल करने की बात कही है। अभी संविधान में देश की अपनी सेना पर पाबंदी है, हालांकि लंबे समय से आत्मरक्षा के लिए सेना बनाने की बात कही जा रही है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। यूं तो क्रिकेट को भद्र लोगों का खेल कहा जाता है, लेकिन इस खेल में कभी कभी कुछ ऐसा भी नजर आता है जो भद्र नहीं बल्कि अभद्र होता है। ऐसी ही अभद्रता दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट मैच में तब नजर आई जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बैनक्रॉफ्ट गेंद के साथ छेड़छाड़ करते कैमरे में कैद हो गए। इसकी गाजगिरी स्टीव स्मिथ पर जिनकी कप्तानी गई और डेविड वार्नर पर भी जिनकी उप कप्तानी छिन गई। एक रिपोर्ट के साथ नवीन नेगी।
केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन कैमरे ने जो कुछ कैद किया उसके बाद तूफान उठना ही था। कैमरे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट अपने पैंट की जेब से पीला टेप निकालकर गेंद पर घिसते दिखाई दे रहे थे। तस्वीर सामने आई, विवाद बढ़ा और एक्शन लेने की मांग शुरू हो गई। कप्तान स्टीव स्मिथ कल ही अपनी गलती मान चुके थे, लेकिन वो कप्तानी छोड़ने से इंकार कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन ने स्मिथ, टीम नेतृत्व और कोचिंग स्टाफ के ऐसे सदस्यों से तुरंत पद छोड़ने के लिए कहा था जिन्हें इस योजना की पहले से जानकारी थी या जो इसमें शामिल थे। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को पद छोड़ना पड़ा। तीसरे टेस्ट के चौथे दिन और पांचवें दिन के लिए टिम पेन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि स्मिथ और वार्नर बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा बने रहेंगे। केप टाउन टेस्ट में रविवार को चौथे दिन का खेल जारी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जेम्स सदरलैंड ने कहा है कि ये टेस्ट मैच जारी रहना चाहिए और अंतरिम तौर पर इस मामले में जिस शीघ्रता की ज़रूरत है उसी आधार पर हम मामले की जांच जारी रखेंगे। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कल के खेल के बाद बॉल टेम्परिंग पर खेद जताया था। हमने इस बारे में लंच के दौरान बात की थी, जो हुआ उस पर मुझे गर्व नहीं है। आप जानते हैं कि ये खेल की भावना के अनुरूप नहीं है। मेरी टीम की और नेतृत्व की निष्ठा सवालों के घेरे में है और ये सही भी है। ये थे स्टीव स्मिथ के शब्द। उधर बॉल टैम्परिंग करने वाले 25 बरस के बैनक्रॉफ्ट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बॉल की स्थिति बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। नियम 41.3 के तहत ऐसा करने पर रोक है। बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि वो इस घटना को लेकर नतीजा भुगतने को तैयार हैं। मैं गलत वक्त में गलत जगह पर था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं क्योंकि मैं अपने किए का जवाबदेह हूं। और जैसा कि कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, जो कुछ हुआ मुझे उस पर गर्व नहीं है। इसके जो नतीजे होंगे वो मुझे भुगतने होंगे। आप जानते हैं कि मेरा सबसे अच्छा अगला कदम आगे बढ़ना और क्रिकेट खेलना हो सकता है। ये थे कैमरन बैनक्रॉफ्ट के शब्द। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भी इस घटना पर निराशा जाहिर की है। आज सुबह जब हम उठे तो सदमे में थे। दक्षिण अफ्रीका से आई खबर निराश करने वाली है। ये सोच से परे है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी में शामिल है। आखिरकार हमारे क्रिकेट खिलाड़ी रोल मॉडल हैं। क्रिकेट साफ सुथरे खेल का पर्याय है। हमारी टीम इस तरह की बेईमानी में कैसे शामिल हो सकती है? ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के शब्द। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही मौजूदा सीरीज लगातार विवादों में रही है। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन से जीत दर्ज की थी। दूसरे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी।
तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, भद्र लोगों के खेल में किस तरह अभद्रता नजर आई। खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश जी, अब तो बहुत कैमरे लगे रहते हैं, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है कैमरों के सामने गेंद के साथ छेड़छाड़।
हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद तनाव इतना ज़्यादा है कि खिलाड़ी भूल जाते हैं कि मैदान में उन्हें क्या करना है, कौन उन्हें देख रहा है। और इस सीरीज़ में तो बहुत कुछ हुआ, क्योंकि डेविड वार्नर का झगड़ा हुआ क्विंटन डिकॉक से, वो भी ड्रेसिंग रूम में कैमरे की नज़र में था। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। क्रिकेट एक्सपर्ट आज मेमन से मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की, तो उन्होंने इस घटनाक्रम को अपने शब्दों में कुछ इस तरह से समेटा।
अफसोसजनक बात ये लगती है कि प्लान बनाया कैप्टन, वाइस कैप्टन और जो उन्होंने कहा लीडरशिप ग्रुप ने, और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने चुना 25 वर्षीय बैनक्रॉफ्ट को, जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है उस टीम के। जगह जो है टेस्ट टीम के अंदर कोई फिक्स नहीं थी, ऐसा लगता था कभी भी ड्रॉप हो सकते, तो वो खुद जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते थे। तो ये गैर फायदा उठाया है यंग प्लेयर का। और जिस तरह से खुद उन्होंने कहा कि ये प्लान बनी थी और सबूत भी जो था जो सामने आया टीवी रिप्लेस का, तो यहां से बच के निकलना किसी तरह से ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया गया है, इनको कैप्टनसी से तुरंत ही हटाया गया है। आईसीसी के कानून के हिसाब से अगर आप बॉल टेम्परिंग करें तो आपको एक मैच का सस्पेंशन मिलता है, जो जहां पर अगर ऑन फील्ड विवाद हो जैसा रबाडा का हो गया था, उनको 2 मैच का बैन मिला था जो बाद में फिर रिवोक हो गया, लेकिन 2 मैच का बैन अगर आप तूतू मैं करें फील्ड पे और 1 मैच का बैन अगर आप बॉल टेम्परिंग करें, तो कहीं ना कहीं ये आईसीसी के भी कानून जो है उनको खुद सोचना पड़ेगा कि किस तरह से गेम को अगर बचाना है तो क्या ये जो नियम उन्होंने बनाए वो सही है या नहीं। मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत नाराज हो गए लोग, प्राइम मिनिस्टर तक जो है वहां के कह दिए कि भाई इन्हें कैप्टनसी से निकाल दे, तो आप सोच सकते हैं कि पब्लिक प्रेशर कितना होगा ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स पे भी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पे भी। मुझे तो लग रहा है कहीं 2 साल के लिए भी बैन न कर दे। स्टीव स्मिथ विश्व के सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, डेविड वॉर्नर जो है मैच विनिंग बल्लेबाज, उनके अलावा जो नाम आए हैं सामने मिचेल स्टार्क विश्व के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माने जाते हैं, जॉश हेजलवुड मगरा के बाद उनका नंबर लगता है, तो ये खिलाड़ी जो ऐसे लग रहा है कि ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन इस वाकये के बाद इतना गहरा दाग लग गया है कि ये कहीं जिंदगी भर नहीं धुल सकता है।
ताज़ा स्थिति क्या है आदेश जी इस मामले में?
देखिए, इस मामले में ताज़ा स्थिति ये है, जैसे कि कल से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि ये सब घटनाक्रम हुआ, अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि आईसीसी ने स्टीव स्मिथ को 1 मैच के लिए निलंबित कर दिया है और उनकी 100% मैच फीस काटी जाएगी और अगला टेस्ट मैच जो जोहानिसबर्ग में होगा उसमें वो मौजूद नहीं होंगे। रही बात बैनक्रॉफ्ट की, जो एक तरह से बलि के बकरे बन गए इस पूरे प्रकरण में, उनके साथ थोड़ी नरमी बरती गई है। उनकी जो मैच फीस है उस पर 75% जुर्माना लगाया गया और 3 डेमेरिट पॉइंट, यानी अगर इस तरह की हरकतें और जारी रहती हैं तो एक निश्चित अंक हैं जिसके बाद से फिर टेस्ट मैच का निलंबन झेलना पड़ सकता है। तो संदीप जी, कुल मिला के ये माना जाना चाहिए कि अब शायद इस प्रकरण का समापन सज़ा के साथ हो जाए, लेकिन जैसा कि आज मेमन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड क्या नैतिकता के आधार पर कुछ कदम उठा सकता है, मुझे लगता है कि शायद ये दूर की कोड़ी होगी कि उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगे।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे, मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखने के ऐलान के बाद अपने पहले इंटरव्यू में जो बीबीसी को दिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, हम सुनवाएंगे आपको। उससे पहले एक खबर राजस्थान में, जहां बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से निर्माण कार्य लगभग ठप पड़ गए हैं। इसकी वजह से मजदूर या तो खाली बैठे हैं या पलायन कर जाने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अदालत ने पर्यावरण की अनदेखी की वजह से बजरी खनन पर रोक लगाई। विपक्ष ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया, लेकिन बीजेपी सरकार इसका ठीकरा अपने से पहले वाली कांग्रेस सरकार के सिर पर फोड़ रही है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
बजरी पर राजस्थान में मुकम्मल रोक है। कहीं कोई इमारत अधूरी खड़ी है तो कहीं कोई परियोजना ठहर गई है। बजरी लेकर फेरी लगाने वाले हजारों वाहन सड़क किनारे खड़े नजर आते हैं। इस हालत से किसी का अपने ख्वाबों का आशियाना बनाने का सपना टूट गया तो मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अदालत ने राज्य में पर्यावरण हितों की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की और बजरी पर रोक लगा दी। राज्य में कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताती है।
सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि माननीय न्यायालय और जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए डिमांड की थी न्यायालय ने, उसको ये फर्निश नहीं कर पाया। लीड करना था बहुत जनता के पक्ष में एक तरह से मजबूती के साथ, उसमें भी सरकार विफल रही। तो इसका नतीजा ये निकला कि खनन घोटाला करने वाली सरकार की संदिग्ध जो कार्यशैली है उसके कारण न्यायालय ने सारे खानों के जो आवंटन है उस पर रोक लगाई है नीलामी पर, और इस बात का सूचक है कि सरकार खुद अवैध खनन को प्रश्रय दे रही है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेरोजगारी का जो लेबर है वो दंश झेल रहा है और आम उपभोक्ता को मकान बनाने की जो कीमत है वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। इसी सारी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं सरकार मजबूती से अदालत में अपना पक्ष रखेगी। श्री राठौड़ कहते हैं इस सब के लिए पिछली कांग्रेस सरकार दोषी है।
शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव से ठीक आचार संहिता से 1 महीने पहले इन्होंने अपनी बजरी की नीति में बदलाव किया। लीज के आधार पर बड़े बड़े भूखंडों में राजस्थान को 29 विभागों में विभक्त करके इन्होंने टेंडर दिए। इन्हीं के समय में टेंडर हुए और बिजली की समस्या हमें विरासत में मिली है। अब न्यायिक विवाद के कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको बंद किया है। राज्य सरकार ने बड़ी सशक्त कार्रवाई की है, लगातार तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है। अप्रैल के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार की कार्रवाई से निश्चित तौर पर निर्माण के कार्य में कुछ आबाद रुकावट आई है वो आबाद के पीछे आगे बढ़ेंगे।
जयपुर में बल्लूराम जैसे कई निर्माण ठेकेदार हैं जो बजरी पर रोक से परेशान है।
मजदूर साहब यहाँ से पलायन कर गए, इसमें तो काफी लोग काम करते थे, अभी उसके तो कोई 25% भी नहीं रहे, क्योंकि इधर कोई कई नागौर से आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से है, कोई बढ़िया चीज तो है नहीं, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है, तो इसका प्रॉपर कोई वो समाधान।
राज्य में कोई 17,000 ट्रक रोज बजरी का परिवहन करते थे, अब इन वाहनों के पहिए ठहर गए हैं। बजरी ट्रक यूनियन के अध्यक्ष नवीन शर्मा हालात का मंजर यूं बयान करते हैं।
मजदूरों का सवाल है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क 70-80% रुक चुके हैं। स्थिति ये है, ट्रक ऑपरेटर्स के सामने भी यही सेम स्थिति है, ट्रक ऑपरेटर्स की जो फाइनेंस करा रहे हैं ट्रक से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं जा पा रही है, उनके साथ भी वो रोजी रोटी का भारी संकट सवाल खड़ा हो गया था।
कोई इमारत यूं ही नहीं बनती, इसमें किसी का पसीना बहता है तो किसी का पैसा लगता है। अब ईंट पत्थर लोहा सीमेंट सब कुछ तो है, लेकिन जब बजरी का साथ ना मिले तो यह सामग्री भी कुछ नहीं कर सकती। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की पराजय और पार्टी प्रमुख मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BBC को दिए साक्षात्कार में कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगा। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस साक्षात्कार में। अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं BBC संवाददाता प्रदीप कुमार।
अखिलेश जी, पहला सवाल तो यही है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो 2019 के चुनाव में आप लोगों का साथ चाहती हैं, गठबंधन बना रहेगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
देखिए, जो परिणाम आया था उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल नाराजगी किसी दल से ना हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है मायावती जी ने एक बार फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया कि अलायंस हो, और अगर कॉन्फिडेंस के साथ होगा, एक दूसरे के भरोसे के साथ होगा तो ज़्यादा लंबा चल सकता है। और जो मकसद है, ऐसे दल जो सत्ता में बैठे हैं जो ना संविधान को मान रहे हैं ना कानून को मान रहे हैं, और जो लोग कहते थे करप्शन हटाएंगे, अभी चुनाव जितने हुए उसमें देख लीजिए किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ नटशेल में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कल की है, इससे कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ा है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि अगर ट्रस्ट के साथ अलायंस किया जाएगा तो ये अलायंस लंबा चलेगा। वहीं अगर उन्होंने कुछ सुझाव दिया है, हो सकता है कोई उस बात को किसी तरीके से ले सकता है, हमारा वर्कर किसी तरीके से सोच सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने राजनीति को बड़े करीब से देखा है कि लोग कैसे बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम या हमारी पार्टी या वर्कर उनको ये कह सकते कि वो एक सुझाव है हमारे लिए, जब राजनीति का लंबा रास्ता तय करना है तो कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा।
इसका मतलब ये है कि आपने उन सुझावों पर विचार किया है जो उन्होंने दिया?
अगर कोई सावधान करता है और वो सच्चाई के आसपास है तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को सावधान रहना पड़ेगा कि धोखा क्या होता है, कोई किस सीमा तक कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। आपके जो सदस्य हैं वो जेल से नहीं आ पाए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, एक ही धरती पर रहने वाले, दूसरे प्रदेश में कुछ कानून लगता दूसरा है, लगता वहाँ के कोर्ट के लोग अच्छा सोचते हैं, हो सकता है हमारे कोर्ट के लोग नहीं अच्छा सोचते होंगे, एक संस्था के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये बात जानूँ और मैं सुनने को मिले और पढ़ने को मिले हमें कि कहीं तो जेल से आकर के वोट डाल रहे हैं लोग, कहीं पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री ने जानबूझ कर कार्यक्रम फिरोजाबाद का लगाया जिससे कि हमारा विधायक यहाँ वोट डालने के लिए ना आ पाए। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे DM को या प्रशासन को कि किसी सीमा तक चले जाना, आप इस वोट को बाहर नहीं निकलने देना, तो कोर्ट भी खड़ा हाथ खड़ा कर देगा।
इसके अलावा कोई और चूक जो रणनीतिक स्तर पर हुई हो आपसे?
हमारे लोगों को तोड़ना, अरे जिन्होंने शराब में किस किस को दिखा दिया, शराब तो हमारे यहाँ सामाजिक बुराई है और शराब से तो सब दूर रहते हैं, और सोचो हमारे, अब तो हमारे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कुछ दिनों का वक्त है उनके पास, ये लगता है एक रणनीति रही होगी जिसमें उन्होंने उनका भी साथ ले लिया, जब उन्हें नहीं पता क्या कि क्या भाषा है बोली गई एक बड़े परिवार से जुड़ी हुई एक बड़ी कलाकार के बारे में क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हमसे ज़्यादा मानते हैं, ये अलग बात है कि हम उनसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन वो लोग सोचो किसको ले रहे हैं जिनको शराब में कौन कौन से भगवान दिखाई दे रहे थे। हम तो कह भी नहीं सकते, अगर कह दें तो पाप पड़ जाएगा। ये हमारे हिंदू लोग तो यही मानते हैं, हम तो ऐसे ही मानते हैं कि अगर गलत कहेंगे तो पाप पड़ेगा हमारे पे, तो हम तो कह भी नहीं सकते।
एक आकलन ये भी है कि आप चाहते तो बिसात बदल सकते थे, पहले BSP के उम्मीदवार को भेजते तो जया जी की सीट भी निकल आती।
इस सवाल पे मैं इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि ये और लोग भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पार्टी के लिए थी और मैं ये मानता था कि मुझे वोट अच्छे मिल रहे हैं और साजिश का मुझे नहीं पता रहा है, क्योंकि वोट कहाँ पड़ रहा है कोई नहीं जानता है। कोई ये भी नहीं जानता था कि दो वोट कैंसिल हो जाएंगे और जो कैंसिल की सूचना आ रही है अंदर से वो ये आ रही है कि किसी ने जानबूझ करके कैंसिल किया, कोई 1, 2, 3 लिख करके ठीक करेगा उस पर? ये तो लगता है कोड वर्ड था, ये कोड वर्ड था किसी को बताने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली है और मैंने अपना वोट कैंसिल करा दिया, ये कोड वर्ड था। इसलिए वोट अंदर जा रहा है, देखने वाला देख रहा है वोट, लेकिन ये साजिश बड़ी थी, हमें सावधान रहना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए।
2019 के आम चुनाव में विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की छवि विपक्ष के सामने बहुत आगे दिख रही है, विपक्ष का चेहरा आपकी नज़र में कौन होगा?
लोग ये कह सकते हैं और खासकर BJP ये कह सकती है, और ये प्रचार भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे या उनके कई बार TV चैनलों पे सुना है मैंने कि देखो पूरी अपोजिशन एक हो गई, रेस्ट ऑफ अपोजिशन इज अगेंस्ट BJP, रेस्ट ऑफ BJP। हम कहते हैं रेस्ट ऑफ जो अपोजिशन उसमें भी तो बेस्ट होगा कोई, वो इस सामने अपने आप आ जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि आज हम तय करें, वो तो चुनाव के बाद तय हो जाएगा। रेस्ट ऑफ अपोजिशन में कोई ना कोई तो बेस्ट होगा।
जहाँ तक UP की बात है, सपा और बसपा में कौन सीनियर पार्टनर होगा, कौन जूनियर?
राजनीति में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, लेकिन अनुभव में वो आगे है, अनुभव में हम कम है।
इसका असर सीटों के बंटवारे पर पड़ेगा?
अभी इस पे चर्चा आपको करनी नहीं चाहिए, जब हमें समझौता करना है तो सीटों की गिनती में आपको नहीं पड़ना चाहिए, जो सीटों की गिनती में पड़ेगा वो समझौता नहीं कर पाएगा। ये समझौता किया है गिनती करके नहीं समझौता किया है।
2019 के चुनावों की दूसरी ओर अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन 2019 का रख नहीं रहे हैं, 2022-2025 की बात कर रहे हैं।
यही तो धोखा है, BJP ने तो ये कहा था कि अकाउंट खुलवा लो 15 लाख आ जाएंगे, कितना अच्छा धोखा दिया, नारा कितना अच्छा बनाया था अच्छे दिन का, लोगों के गरीबों के किसानों के नौजवानों के बुरे दिन आ गए और फिर कमाल के लोग हैं ये तो, इनका नवरात तो लड्डू खाने के बाद भी नवरात बने रहता है। हम और आप लड्डू खा लें अगर तो हमारा आपका व्रत टूट जाएगा, न जाने कितने TV अपने चैनल तोड़ देते, TV बोल बोल करके आग लगा देते कि देखो नवरात में इन्होंने लड्डू खा लिया और कह रहे हैं कि नवरात का व्रत है, लेकिन देखो वहीं लड्डू भी खा लिया और व्रत नहीं टूटा, ये तो नया व्रत है कोई, लड्डू खा के व्रत रख सकते हैं, हम भी रखेंगे ऐसा, दिन में 10 लड्डू खाएंगे और व्रत रहेगा हमारा।
इधर आपकी बातों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात बार बार आ रही है, हालांकि जब तक आप मुख्यमंत्री थे तब तक आप ऐसी किसी बात से हिचकते रहे?
देखिए हम कभी किसी चीज से हिचकते नहीं है, पहली बात तो ये साफ हो जाए। हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे थे, BJP ने कहा कि तुम फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड हो, हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि हम बैकवर्ड हैं। मैं तो कहता हूँ उनमें से जो फॉरवर्ड हो, हमसे बेहतर एक्सप्रेसवे पूरे देश की धरती पे कहीं बनाया हो तो हमें बता दें। मैं धन्यवाद देता हूँ BJP का जिन्होंने मुझे बैकवर्ड बना दिया, तो आज मैं खुश हूँ, लेकिन मैं बैकवर्ड हूँ प्रोग्रेसिव हूँ, मैं बैकवर्ड जरूर हूँ, लेकिन हमारे साथ एक विजन है कि देश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और जहाँ तक आबादी के हिसाब से है वो बात मैं यहीं से कहता हूँ, हमें बैकवर्ड क्यों समझो, हमें बुरा लगे, हम आपसे झगड़ा क्यों लगाएं, हम आपको नाराज़ नहीं करना चाहते तो आप हमें मत नाराज करो, कल को कोई कुछ और कहेगा, अभी सुनने में आ रहा है कोई कह रहा दलित से महादलित कर दो, कोई कह रहा बैकवर्ड में अति बैकवर्ड कर दो, अरे भाई हमें कितना तोड़ोगे, कितना भगाओगे इधर उधर, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं हमें बैकवर्ड ही मत कहो, हमें गिन लो और आबादी के हिसाब से हमें दे दो, सभी को दे दो आबादी, आप भी ले लो आबादी के हिसाब से, और अगर आपको शक है इस फार्मूले पर तो कोई दूसरा फार्मूला हो तो आप हमें बता दो। हम ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से बन जाए सब, आप 50% में हमें सीमित करना चाहते हो, हम कहते हैं कि सबको जितनी जितनी आबादी है उसके बाद से बांट दो, सबको हक दे दो, और शायद आज टेक्नोलॉजी और शायद आज जागरूकता इनको वाद्य कर देगी, कभी ना कभी ऐसी ताकत बनेगी जो आबादी के हिसाब से ही चीजें आएंगी। और जिनको लगता है कि आरक्षण खराब चीज है या हम ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ स्लॉट बना लो, उसमें सबको जो टॉपर्स हैं, यादव टॉपर हों, कुर्मी टॉपर हों, पाल टॉपर हों, आपके प्रजापति टॉपर हों, उन सब टॉपरों को 20% में डाल दो, बाकी जितना 80% वो आबादी हिसाब से बांट दो। इसलिए ये जो फार्मूला होगा शायद ही किसी को नाराजगी होगी।
नोटबंदी के बाद सरकार बैंकों के निजीकरण की बात कर रही है, रेलवे का निजीकरण भी हो रहा है। इस निजीकरण के खिलाफ मुलायम सिंह यादव हमेशा लड़ते रहे थे, इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है?
ये इतना बड़ा सवाल है कि हम आप एक लाइन में नहीं तय कर सकते हैं। जहां नौकरियों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, इस पर सोचना पड़ेगा। सरकारी इंतजामों को, जो पॉलिसीज हैं, उनको बेहतर किया जाए तो शायद नौकरी का सवाल भी का भी रास्ता निकला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि नौकरियां कितनी निकालोगे आप और आप दे कितनी पाओगे, आपकी ग्रोथ क्या है? तो इसलिए जो 25 साल पहले फैसले हुए हैं उसने हमारे अर्थव्यवस्था को दूसरी दिशा में ले गए। तो कोई ये कह दे कि हम एक दिन में बदल देंगे, संभव नहीं है। क्योंकि उस समय के भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो अर्थव्यवस्था का और बाजार खुला है, इसका जो ट्रिकलिंग इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि ऊपर से चलेगा, नीचे को वाले को लाभ मिलेगा। लेकिन शायद 25 साल में जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। तो एकदम बदल देना शायद संभव नहीं होगा किसी के लिए। हाँ, लेकिन समाजवादियों की सरकार भारत की जनता 10 साल 20 साल बना दे तो वो जो सपना देखते हैं समाजवादी लोग वो पूरा कर देंगे।
आखिरी में मैं आपको फिर 2019 के आम चुनाव की ओर लेकर आता हूँ। क्या होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बनेगा या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनेगा? दोनों ही परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होगी?
अभी कह पाना मुश्किल है किस तरीके से मोर्चा बनेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बिना कांग्रेस के भी कोई मोर्चा नहीं बनेगा या कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई नई सरकार नहीं बनेगी, ये कह पाना आज मुश्किल है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का रोल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार। और एक खबर और बताता चलूं मैं आपको खेल के मैदान से, अगले साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए अफगानिस्तान की टीम ने बहुत शान के साथ अपनी जगह पक्की कर ली है। इस खबर पर और जानकारी के लिए एक बार फिर आदेश जी।
जी संदीप जी, देखिए जिम्बाब्वे में आज अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज़ के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल मुकाबला खेला गया। वैसे फाइनल में पहुंचने के साथ ही दोनों टीमों ने अगले साल होने वाले विश्व कप में भी अपनी जगह बना ली थी, लेकिन सबकी नज़रें फाइनल पर थी क्योंकि एक तरफ गेल भी थे। लेकिन आप देखिए कि वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी पूरी पारी 46.5 ओवर में 204 रन पर सिमट गई और जो गेल हैं वो केवल 10 रन बना सके। लेकिन दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरा तो उसने जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य 40.4 ओवर में ही केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इस तरह से 7 विकेट के साथ एक भारी भरकम जीत हासिल की। अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने 84 और रहमत शाह ने 51 रन बनाए। तो यह कहना होगा कि अफगानिस्तान ने शान से फाइनल में जगह बनाई और वेस्टइंडीज ने खोया हुआ गर्व हासिल किया, क्योंकि अगर वो इस क्वालिफायर के माध्यम से विश्व कप में नहीं खेल पाता तो सोचिए दो टाइम की विश्व कप चैंपियन टीम किस तरह से, एक तरह से ये कहना चाहिए कि पतन के कगार पर और दिखाई देती।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदेश। और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं रजनीश कुमार से।
बीबीसी समाचार। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ करने की बात स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है। कैटलोनिया के पूर्व नेता कार्लस पुजीमुंड को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्लस पुजीमुंड के वकील का कहना है कि वो फिनलैंड से वापस लौटने के क्रम में डेनमार्क की सीमा पार कर रहे थे, तभी जर्मनी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान में नेटो देशों के शीर्ष कमांडर ने रूस पर तालिबान को मदद करने और हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था, जिसे रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि पश्चिमी शहर हेरात में एक शिया मस्जिद के पास दो आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें एक की मौत हुई है और 7 जख्मी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और फेसबुक के जरिए हमेशा की तरह हमें आपसे जोड़ रही थी मीना कोटवाल। अगला कार्यक्रम जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी फिर मुलाकात। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।